ओम नमस्ते जी। 121वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ, आठवां अध्याय, दिवाकर की विस्तृत गगन कार्य क्षेत्र में तपन 1870। आगे इसी मेले में हाथरस के प्रसिद्ध विद्वान पंडित हरजस राय भी आए थे और पंडित विशुद्धानंद भी वहीं थे। ये दोनों गुरु भाई थे। पंडित हरजस राय अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे कि दयानंद अलग बैठकर मूर्ति पूजा का खंडन करता है, यदि हमारे सामने आएगा तो उसकी वाक भी न चल निकलेगी। विद्यार्थियों ने यही बात जाकर स्वामी जी से कह दी। स्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहा कि ऐसी सिद्धि तो हमें अवश्य देखनी चाहिए जो वाक भी न निकले। पंडित जी से हमारी अवश्य भेंट करा दो और स्वामी विशुद्धानंद भी उनके साथ रहें। पंडित हरजस राय और स्वामी विशुद्धानंद को स्वामी जी से भेंट करने के लिए बहुत कुछ कहा गया, परंतु वे न आए। इस पर स्वामी जी ने यहाँ तक कहलाकर भेजा कि यदि वे नहीं आते हैं तो हम ही उनके पास चले जाएंगे, परंतु फिर वे स्वामी जी से वार्तालाप करने के लिए उद्यत नहीं हुए। काशी शास्त्रार्थ के कारण स्वामी दयानंद का नाम चतुर्दिक प्रतिध्वनित हो रहा था। मेले में जो कोई धर्म जिज्ञासु व प्रतिष्ठित पुरुष आता था, वह यथाशक्ति उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनका उपदेश सुनकर और उनके दर्शन करके ही अपने को कृतकृत्य समझता था। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ब्राह्म समाज के प्रधान नेता भी मेले में पधारे थे और स्वामी जी का परिचय पाने पर उनसे मिलने गए थे। स्वामी दयानंद उस समय जबकि महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर आए थे, लेटे हुए थे। उनके आने की सूचना पाकर वे उठकर बैठ गए। तब दोनों महानुभावों में बहुत देर तक प्रेमालाप होता रहा। स्वामी दयानंद ने उनसे वैदिक पाठशाला स्थापित करने का प्रस्ताव किया। ठाकुर महाशय ने उत्साहदान पूर्वक कहा कि इसके लिए आप कलकत्ता पधारें, उस समय इस विषय पर विचार किया जाएगा। स्वामी दयानंद के पूर्व परिचित मित्र काशी निवासी पंडित ज्योति स्वरूप उदासी भी 30-40 मनुष्यों के साथ उनसे मिलने मेले में आए और परस्पर प्रेम संभाषण में संतोष लाभ करके चले गए। स्वामी जी ने प्रयाग में अपने भक्तों से अपने जीवन की कुछ घटनाएं भी कही थीं, परंतु अनुसंधान करने पर भी ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं मिल सकी जिसका उल्लेख उन्होंने अपने बाद में लिखे और छपवाए गए आत्मचरित्र में न किया हो। प्रयाग में उन दिनों कुछ लोग ईसाई मत को स्वीकार करने के लिए तत्पर थे। उन्हें स्वामी जी के पास लाया गया। उनके संसर्ग और उपदेश से उनके सभी संशय मिट गए, जिससे वे अपने पैतृक धर्म में ही पूर्ववत बने रहे। कुछ दुष्ट प्रकृति के मुसलमानों ने स्वामी जी के प्राण हरण की चेष्टा भी की थी। उनसे उनकी रक्षा एक बंगाली सज्जन माधव चंद्र चक्रवर्ती ने की थी। स्वामी दयानंद के सत्संग और उपदेश का लोगों पर असाधारण प्रभाव पड़ता था। न जाने कितने मूर्ति पूजक उनके सत्संग से परमेश्वर पूजक बन गए थे, कितने ही नास्तिक आस्तिक बन गए थे, कितने ही दुराचारी सदाचारी बन गए थे। उनमें मनुष्यों के चित्त को आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। इसका एक देदीप्यमान उदाहरण इस प्रकार है। जो लोग स्वामी दयानंद के उपदेश श्रवणार्थ उनके पास आते थे, उन्हीं में से एक बंगाली सज्जन माधव चंद्र चक्रवर्ती भी थे। वे सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवरसीयर, वर्तमान समय के जूनियर इंजीनियर थे और उन्होंने पुष्कल धन कमाया हुआ था। उस समय वे पेंशन लेकर ठेकेदारी का कार्य कर रहे थे, जिससे उन्हें पर्याप्त आय होती थी। वे बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के थे। अंग्रेजी के अतिरिक्त वे फारसी भाषा के भी ज्ञाता थे और कव्वालियों, एक प्रकार का फारसी छंद, इसके बड़े अनुरागी थे। वे अपने को बड़ा तार्किक समझते थे और उन्हें अपनी इस तार्किकता का बड़ा घमंड था। वे कहा करते थे कि मेरी युक्तियों का कोई खंडन नहीं कर सकता। उन्होंने 101 प्रश्न लिख रखे थे और जब कोई किसी धर्म का प्रसिद्ध धर्मोपदेशक प्रयाग में आया करता था तो वे उसके पास जाकर यही 101 प्रश्न किया करते थे और उसे निरुत्तर करके चले जाते थे। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से भी यही 101 प्रश्न उन्होंने पूछे थे, परंतु उनके उत्तरों में माधव बाबू को संतोष नहीं हुआ था। माधव बाबू जन्मना जाति के ब्राह्मण थे, परंतु हिंदू धर्म से उनका विश्वास उठ गया था और वे ईश्वर तक के विश्वास को तिलांजलि दे चुके थे। उनके विचार कुछ कुछ इस्लाम मत की ओर झुके हुए थे। सो जैसे उनके विचार थे वैसे ही आचार भी हो गए थे। मद्यमान सेवन तो उनकी किसी गिनती में भी न था। उन्होंने तो एक मुसलमानी वेश्या भी रख छोड़ी थी। जब ऐसा आचारहीन व्यक्ति स्वामी दयानंद के संपर्क में आया तो उसने अपने पूर्व के अभ्यासानुसार वही 101 प्रश्न उनके सामने भी प्रस्तुत कर दिए। इन प्रश्नों का जो उत्तर स्वामी जी ने उसे दिया उससे उनकी तर्कणा शक्ति ही उसे जवाब दे गई और उनका सारा गर्व चूर्ण हो गया। फल यह हुआ कि उनका हृदय मंदिर जो अब तक अश्रद्धा और अविश्वास के तिमिर से आच्छादित था सत्य और श्रद्धा के आलोक से आप्लावित हो गया। अंत में उन्होंने स्वामी दयानंद की शिक्षा और उपदेश को ग्रहण किया तथा जहां अपने असत्य विचारों से विदा ली वहां अपने कदाचारों से भी मुख मोड़ लिया। अब वह नास्तिक से पक्का आस्तिक बन गया था। स्वामी दयानंद ने स्वयं अपने कर कमलों से उसे संध्या और बलिवैश्व देव विधि लिखकर भेंट की। अब माधव बाबू प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या हवन और गायत्री जप करने लगे। धार्मिक दृष्टि से उनका नूतन जन्म था। उनके जीवन में इस प्रकार आमूल चूल परिवर्तन हो गया था। यह सब परिवर्तन देखकर उनके मित्र भी चकित थे। मित्रों ने उनसे इसका कारण पूछा तो माधव बाबू ने कहा कि स्वामी जी जो कुछ कहते हैं उसके विरुद्ध मैं कुछ भी न बोल सका। उनके विरुद्ध मुझे कोई भी युक्ति नहीं सूझी। मैंने उनके वचन को सत्य मानकर ग्रहण कर लिया है। स्वामी दयानंद ने भी अपने पूना प्रवचनों में जो उल्लेख आया है, प्रयाग में भी मुझे मारने वाले मारने के लिए आते थे, परंतु माधव प्रसाद नाम का एक भद्र पुरुष था, उसने मुझे बचा लिया। यह गृहस्थ माधव प्रसाद ईसाई मत स्वीकार करने को तैयार था और उसने सब पंडितों को नोटिस विज्ञापन दे रखी थी कि अपने आर्य धर्म के विषय में मेरी खात्री यानी विश्वास 3 महीने के भीतर न करा दी तो मैं ईसाई मत स्वीकार कर लूंगा। मैंने उसकी आर्य धर्म विषयक खात्री करा दी और वह ईसाई होने से बच गया। स्वामी जी का यह कथन उनके रामनगर काशी पहुंचने से पहले के प्रयाग आगमन का है, जबकि यहाँ उल्लिखित माधव बाबू काशी शास्त्रार्थ के बाद स्वामी जी के प्रयाग कुंभ में पहुंचने के बाद संपर्क में आया था। इसी प्रकार पहले वाला माधव प्रसाद तो ईसाई बनने जा रहा था और यह माधव बाबू तो इस्लाम मत की ओर झुका हुआ था। स्वामी जी को मारने की घटना दोनों ही अवसरों पर उल्लिखित है, पर दोनों बार बचाने वाले क्रमशः माधव प्रसाद और माधव चंद्र चक्रवर्ती हैं। उन दिनों माधव बाबू का एक मुसलमान से मुकदमा चल रहा था। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि क्या करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि जो सत्य हो वही करना चाहिए। माधव बाबू ने ऐसा ही किया और मुकदमा हार गए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी, परंतु इससे उन्हें तनिक भी दुख न हुआ, अपितु उन्हें इससे बड़ी शांति मिली। मुकदमे के विषय में वे कहा करते थे कि मुकदमा हार कर जब मैं कचहरी से बाहर आया और इक्के पर घर लौटा तो जो निर्मल आनंद का भोग मैंने उस समय किया वैसे पहले कभी मैंने मुकदमा जीतने पर भी नहीं किया था। जब तक स्वामी जी प्रयाग में रहे तब तक माधव बाबू स्वामी जी के लिए अपने पाचक के हाथ उनके लिए भोजन भेजते रहे। विदुषी बाजी बड़नगरी जो काशी में वरुणा गंगा के संगम पर स्थित आनंद गुफा के निकट रहा करती थी और जो उन दिनों विद्योपार्जन कर रही थी तथा ज्योतिष को पढ़कर तब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी, उसने प्रयाग के कुंभ मेले में माघवदी एकादशी संवत 1926 विक्रमी तदनुसार 27 जनवरी 1870 ईस्वी को स्वामी दयानंद का नाम सुना। इसके विषय में पाद टिप्पणी आ रही है। स्वामी दयानंद जब दूसरी बार आश्विन संवत 1915 विक्रमी अक्टूबर 1858 ईस्वी में काशी आकर वरुणा और गंगा नदी के संगम पर स्थित आनंद गुफा में ठहरे थे, उस समय यह गुफा परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाने के कारण उनके शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती पूर्व नाम रामेश्वर दवे के अधिकार में थी। इन्हीं रामेश्वर दवे की इकलौती पुत्री बाद में मां जी हरिकुंवरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये पिता पुत्री इसी गुफा में रहकर संवत 1903 सन 1846 ईस्वी से परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने में लीन हो गए थे। 1860 ईस्वी में इन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का भी 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या यही मां जी हरिकुंवरी ही विदुषी बाजी बड़नगरी हो सकती है? परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य के संवत 1904 विक्रमी के प्रथम काशी अध्ययन काल में उनके संरक्षक और मार्गदर्शक रह चुके थे। तो जैसा कि हमने बताया, विदुषी बाजी बड़नगरी स्वामी जी से मिलने आई। 10-20 विद्यार्थियों के साथ राजा वासुकी पर गई। वहां गंगा तट पर पत्थर के फर्श पर उसने स्वामी जी को बैठे हुए देखा। बहुत से सन्यासी और पंडित लोग एकत्रित होकर वहां स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के लिए आते और उनके सामने दो एक बातों में ही उखड़ कर चले जाते। वह वहां कुछ समय तक रहकर इस सब का आनंद लेती रही। इस समय भीड़भाड़ के कारण वह स्वयं स्वामी जी से कोई बात नहीं कर पाई थी, इसलिए दूसरे दिन वह फिर आई। तब स्वामी जी से उनकी बात हुई। तब उसकी बातों से उसके मन में उनके प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया। इस समय उसने स्वामी जी से यह भी पूछ लिया कि प्रयाग के बाद आगे उनका कहाँ जाना होगा। तब स्वामी जी ने उसे अपने मिर्जापुर जाने की बात कही। उनकी इसी बात को ध्यान में रखकर वह भी वहां के लिए माघ सुदी पड़वा 1 फरवरी 1870 ईस्वी को प्रयाग से मिर्जापुर के लिए निकल पड़ी थी। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।